ओम शांति। इस तपस्वी जीवन में साधना के पथ पर मुख्य रूप से दो शक्तियों की जरूरत पड़ती है। एक परखने की शक्ति और दूसरा निर्णय करने की शक्ति। अगर इन दोनों शक्तियों में हम सब महारत हासिल कर लेते हैं तो बाकी सभी शक्तियां स्वयं में स्वतः आने लगती हैं। कदम कदम पर निर्णय करना बुद्धि का काम होता है, जजमेंट पावर। परखना, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, परख कर यथार्थ निर्णय लेना। अगर ये हमको कला आ जाती है तो हम साधना के पथ पर सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। पुरुषार्थ हमारा नेचुरल हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, सहज स्वाभाविक। जैसे हमको चलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पहले से माइंड को सेट करके जाते हैं कि हमको यहाँ पर जाना है। रास्ते में सोचना नहीं पड़ता है, इधर जाएं उधर जाएं सोचना पड़ता है, स्वतः काम होता है। ऐसे ही अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत तब करनी पड़ती है जब हम थोड़ा अलबेला हो जाते हैं, मनमत में, परमत में, परचिंतन में, परदर्शन में, या स्वयं को ही भूल जाते हैं, तो फिर जो सहज मार्ग है वो भी मुश्किल लगने लगता है। अगर एक व्यक्ति के लिए भी ये साधना का पथ सहज है तो सबके लिए सहज होना चाहिए। बाबा कहते हैं, सहज तो है लेकिन मुश्किल स्वयं बना लेते हो, स्वरूप को भूल जाते हो। और जब हम स्वरूप को भूल जाते हैं तो स्व लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, स्व देश को ही भूल जाते हैं, स्वयं के लक्षणों से परे चले जाते हैं, स्वयं के कर्मों से विस्मृत हो जाते हैं। तो पुरुषार्थ हमारा नेचर हो जाए उसके लिए स्वयं पर ही अटेंशन रखने की जरूरत है, कदम कदम पर, पग पग पर। क्योंकि बाबा कहते हैं माया की चाल भी बड़ी लुभावनी है, तरह तरह के प्रलोभन हैं, नए नए रूप से, आकर्षक ढंग से, मनमोहक ढंग से माया मन को वश में कर लेती है, परवश हो जाते हैं। क्योंकि लंबे समय तक हमने अपनी बुद्धि को, मन को माया के हवाले करके रखा हुआ था। जो छोटे विचार, नकारात्मक विचार, उनसे हमारा मन बुद्धि भरा हुआ था, विकारी विचार, तो स्वतः अपने आप काम करते हैं। लेकिन बाबा ने आते ही हम सबको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। अगर हमको ये स्मृति में रहता है कि स्वयं भगवान ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, तो ये जीवन रूप पर जो रजिस्टर है ये बेदाग हो जाएगा। नहीं तो कदम कदम पर दाग लगते ही रहते हैं, एक दाग मिटता नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, दाग पर दाग लग जाते हैं। आत्मा फिर और पीड़ित हो जाती है, दुखी हो जाती है, हीन भावना भर जाती है, अपने प्रति आत्मविश्वास की कमी हो जाती है कि जो हमको करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो हमें स्वयं को इन कमजोरियों से स्वतंत्र करना है, मुक्त करना है। दूसरा कोई करने नहीं आएगा, बाबा भी नहीं करेगा, उसने रास्ता बता दिया है, करना तो अपने को ही पड़ेगा। बाबा मदद देगा लेकिन मैं हिम्मत तो अपने आप को रखनी पड़ेगी। तो ये ब्राह्मण जीवन बड़ा हिम्मत वाला जीवन चाहिए। हिम्मत वाले ही इस जीवन का सुखद अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मत नहीं हारनी है। हम सब ने ब्राह्मण जीवन में जब भगवान का हाथ थामा, दामन थामा, तब हम सबको कितनी खुशी हुई थी, क्योंकि बचपन के सपने थे। इस जीवन में कभी भी संकल्प तो किया होगा ना सबने कि एक दिन भगवान आएगा, हम उसे मिलेंगे, उसे बैठ बातें करेंगे, रूहान करेंगे, देखेंगे वो कैसा है, हमारे लिए वो क्या सोचता है, हमारे प्रति उसका कैसा दृष्टिकोण है। मन में तो संकल्प थे ना सबके। तो जब भगवान मिल गया तो उसमें कितनी खुशी हुई थी सबको, हुई थी ना खुशी। तो तब से लेकर अभी तक खुशी बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, निरंतर बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आ जाता बीच में। तो एक कभी कभी तो नहीं आना चाहिए ना। खुशी का ग्राफ तो निरंतर एकदम उड़ती कला में जाता जाना चाहिए, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे सीन सीनरे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे संकल्प आ जाते हैं, मायावी संकल्प आ जाते हैं जो पुरुषार्थ में अवरोधक बन जाते हैं, पुरुषार्थ की स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, खुशी को छीन लेते हैं। तो हमको ये निरंतर स्मृति में रखना है कि भगवान की छत्रछाया में हम पल रहे हैं। जो भी लेना है 84 जन्मों के लिए, अभी सारा कुछ उससे ले लेना है। बाबा कहते हैं मैंने तो दे तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमने सब कुछ लिया नहीं है अभी तक। अगर सब कुछ ले लिया होता तो हमारी चलन और चेहरे में, सीरत और सूरत में वैसी थोड़ी पर्सनैलिटी दिखाई देनी चाहिए था ना, वैसा व्यक्तित्व तो झलकना चाहिए था। तो अभी तक हमने सारा कुछ लिया नहीं है उसे, केवल बुद्धि तक है कि भगवान से जो मिलना चाहिए था वो सब कुछ उसने दे दिया, पाना था सो पा लिया, लेकिन बीच बीच में खाली खालीपन भी लगता है, तो वैक्यूम बना रहता है, उसको भरना है। तो निरंतर एक स्मृति रहनी चाहिए कि भगवान से हमको सब कुछ ले लेना है। अब सब कुछ कहने में तो आ गया, लेकिन उसका पता भी होना चाहिए सब कुछ क्या, तो क्या लेना उससे सब कुछ। खुशी, शक्ति, दैवी गुण और क्या लेना है, क्योंकि हमको क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज की। केवल रटा रटाया ज्ञान नहीं कि पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा, लेकिन क्या क्या पाया। बाबा कहते प्राप्तियों को याद करो सदा। तो हमने क्या क्या पाया उससे, अगर सार में कहें तो उसको ही पा लिया, लेकिन इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। उसने क्या क्या दिया, उसको तो पा लिया, लेकिन वो क्या क्या लेके आया हमारे साथ पास में। बाबा कहते हैं मैं हथेली पर बहिष्ट लेके आया हूं, लेकिन बहिष्ट जैसे लक्षण तो हमारे में दृष्टिगोचर तो हो नहीं रहे होते हैं, कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। बाबा कहते दैवी गुण होने चाहिए, लेकिन बीच बीच में दूसरे भी अपना प्रभाव दिखा देते हैं। तो वास्तव में थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। खजाने को अंदर से खंगालेंगे तो पता चलेगा अंदर कितने हीरे मोती हैं। सारा खजाना दबा के रखा हुआ है, उसकी स्मृति नहीं है तो जीवन में खुशी कहाँ से रहेगी। तो खजाने को साथ में उसका यूज करना है, उसका उपयोग करना है, आज थाना बाबा ने कहा चलते फिरते क्या करो, विचार सागर मंथन करो। ये क्या है? बुद्धि के लिए भोजन है। हम अपने शरीर की पालना के लिए कितना ध्यान रखते हैं, भोजन करते हैं समय समय पर, उसको दवाई देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको स्नान कराते हैं, लेकिन ज्ञान स्नान कहाँ तक है? आत्मा को जो खुराक खिलानी चाहिए तीनों टाइम, कहाँ तक खिलाते हैं हम? बाबा कहते कम से कम दो बार ज्ञान स्नान करो, अर्थात मुरली को पढ़ो, उसका चिंतन करो, उसको बुद्धि में लाओ, ताकि वो हमारे संस्कार बन जाएं, और वो संस्कार हमको क्या करेंगे, प्रफुल्लित रखेंगे। ईश्वरीय संस्कार दैवी संस्कारों से भी ऊंचे हैं, ईश्वरीय संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार उच्च कोटि के संस्कार हैं। तो ये संस्कार एक दिन से नहीं बनता है, बार बार बनाना पड़ता है। अगर हम नए संस्कारों का निर्माण नहीं करते हैं तो पुराने संस्कार ही हमारा गला घूंटते रहते हैं। बताया ना बाबा ने, फिर गला घुट जाता है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकल जाता है। तो गला कौन घोटता है? हमारे ही संस्कार हमारा गला घोटते रहते हैं, दूसरे को क्या पड़ी हुई है। इसलिए कहते ना, आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो हम स्वयं के ही दुश्मन बने रहते हैं। कैसे बनते हैं? श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, ज्ञान योग में थोड़ा ढीला बन जाते हैं, थोड़ा परचिंतन करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, परहेज में थोड़ा ढिलाई छोड़ देते हैं, दृष्टि वृत्ति पर कंट्रोल नहीं है, सारे दिन में सारी छोटी छोटी भूलें कितनी होती रहती हैं। तो हमारा दुश्मन कौन हुआ? हम खुद ही स्वयं के दुश्मन हैं। अगर हम स्वयं के ऊपर नज़र रखेंगे तो कमजोरियों को निकालने का थोड़ा चांस रहेगा, निकलेंगे बाहर से। नहीं तो बाबा ने कहा ना, माया भी योगी बन जाते हैं, माया भी समझदार बन जाते हैं, माया भी अटल अखड़ अटल और अचल योगी बन जाते हैं। वो भी बहुत समझदार होते हैं कि मेरे जैसा बुद्धिमान है ही कोई नहीं। अर्थात ज्ञान तो समझ में है, आचरण में नहीं है, क्योंकि ताकत चाहिए। इस ज्ञान को हजम करने के लिए ताकत चाहिए, और जब तक वो बुद्धि स्वच्छ नहीं है वो ज्ञान हजम होगा भी नहीं, ठहरेगा भी नहीं बुद्धि में। ज्ञान बुद्धि में ठहरा ही नहीं है तो वो ज्ञान दवाई बनकर काम कैसे करेगा? ज्ञान एक दवाई की तरह काम करता है, और दवाई को हमने केवल मुंह में रख दिया, खाया ही नहीं उसको, तो काम करेगी नहीं। ऐसे ज्ञान को केवल हमने सुन लिया एक बार, लेकिन उसको हजम नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, वो हमारे कर्मेंद्रियों में समाया ही नहीं ज्ञान, तो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। केवल एक खाना पूर्ति हो जाएगी कि हाँ ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो ज्ञान जो हमारे जीवन में समा जाना चाहिए, जिसकी खुशी होनी चाहिए, जिसका परिवर्तन हमको स्वयं को महसूस होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो इस ब्राह्मण जीवन के महत्व को समझना है और इसका संपूर्ण आनंद लेना है। संपूर्ण आनंद लेने का, अतिंद्रिय सुख करने का टाइम केवल अभी है, अभी नाउ। इस दरवाजे के बाहर जाएंगे वो भी खत्म हो जाएगा। अभी जीना है तो अभी, नहीं तो होता क्या है, बैठे तो इतने बुद्धि दरवाजे से बाहर ही होती है, कितना भटक जाती है। मन बुद्धि को पकड़ना माना सबसे बड़ी साधना है ये। जिस काम के लिए हम बैठे हैं वहीं बुद्धि पूरा एकाग्र हो जाए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुरली सुनते सुनते भी कोई तबाही होकर बैठते हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, भले कोई भी कर्म कर रहे हैं, घरेलू काम काज ऑफिस में या कहीं भी कर रहे हैं, उस काम में अगर बुद्धि पूरी एकाग्र हो जाती है, पूरी निष्ठा के साथ वो सेवा कर रहे हैं, तो हमारी एक आदत बन जाती है अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण रखने की। और जहां हमने अपने मन बुद्धि को नियंत्रण में करना सीख लिया तो वो हमारे लिए एक दोस्ती का काम करेंगे, हमारे सहयोगी साथी बन जाएंगे, समय पर हमको आगे बढ़ाने के वो निमित्त बन जाएंगे। नहीं तो हमारी बुद्धि ही हमको भटकाती रहेगी। तो बहुत सारी बातें हैं, तो अभी हम कल की मुरली पर चर्चा करेंगे। क्या थी मुरली कल की? जोर से बोलो, जोर से। वर्तमान समय की आवश्यकता है बेहद के वैराग्य की वृत्ति। और पिछले संडे के मूल्य का हेडिंग क्या था? हेडिंग उससे पिछले था वो, तो अब बहुत पीछे चले गए आप। सहज योगी जीवन प्रत्यक्ष रूप किस चीज का? परिवर्तन शक्ति, है ना। तो धीरे धीरे हम बुद्धि को पीछे लेके जाना, ज्ञान सारा अंदर में है। हाँ, प्राप्तियों के बारे में भी था, तो बुद्धि को ऐसे पीछे लेते जाना है, क्योंकि ज्ञान जो थोड़ा ना मर्ज हो जाता है, उसको इमर्ज करना है, तभी तो चिंतन बढ़ेगा हमारा। तो वर्तमान समय संसार में तो देख रहे हैं वैराग्य की जरूरत तो है ही है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर समय अनुसार वैराग्य हमको आता है तो नंबर समय को मिलेंगे। अगर हम ईश्वरीय मर्यादा अनुसार, ईश्वरीय शिक्षा अनुसार, श्रीमत अनुसार और एक समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ निरंतर हमारी वैराग्य वृत्ति रहती है, तो उसके मार्क्स हमारे खाते में जाएंगे। जैसे पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, ऐसे वैराग्य भी ब्राह्मण जीवन का मूल फाउंडेशन है। वैराग्य किस क्या किसे कहेंगे? वैराग्य क्या? वैराग्य अर्थात क्या? हाँ जी, अनासक्त भाव और डिटैचमेंट, दुनिया की बातों से, किसी भी देदारी के बातों में प्रभाव में नहीं आना, लगाव, नष्ट मुआ बनना, स्थूल चीजों में और सूक्ष्म में भी मेरापन खत्म। वैराग्य अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इसको भी कहा जाता है जहां आत्मा की अविनाति होती है उन चीजों से अनासक्त रहना, जहां आत्मा का पतन हो रहा है। और शॉर्टकट संसार में तो कहा जाता है ये देह मिट्टी, देह को मिट्टी समझना और संसार को असार समझना, ये वैराग्य की परिभाषा संसार में भी मानी जाती है। ये देह मिट्टी है और संसार असार है, ये वैराग्य की। और वैराग्य हमें कब पैदा होता है? जब हम तुलना करते हैं। जब कोई चीज़ हमको बड़ी चीज़ मिल जाती है तो दूसरी चीज़ से हमारी जो एक मोह की रग है, अटैचमेंट है, वो स्वतः धीरे धीरे कम होने लगती है। ज्ञान मार्ग में आने के बाद भक्ति मार्ग की तरफ हमारी रग जाती है तो वो स्वतः हमको समझ आ गई ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई, पता चल गया कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो एक समझ है वो। तो वैराग्य भी हमको हर चीज की समझ में दी गई है कि कोई भी चीज को यूज तो करना, हमको प्यार से यूज करना उसको, लेकिन उससे हमारी इतनी अटैचमेंट ना हो जाए कि उसके बिना हम जी ना सके। वो चीज है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, माना उसके पीछे नहीं पड़ जाए हम, उसके बिना हमारी सेवा नहीं हो, हमारे जीवन में अधूरापन रहे, ऐसा नहीं कि उससे हमारी इतनी आसक्ति हो जाए कि जीना दुश्वार हो जाए, उसके मुश्किल हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यारा और प्यारा, इन दोनों का बैलेंस चाहिए, चाहे व्यक्ति से, चाहे वस्तुओं से, संबंध संपर्क में आते हुए आत्माओं से, न्यारा और प्यारापन का बैलेंस चाहिए। न्यारा होना ही वैराग्य है, लेकिन इतना भी न्यारा ना हो जाए कि समय पर अगर चीज है और उसकी जरूरत भी और उपयोग नहीं करे उसका, तो उसको उपयोग में भी करना है। तो बाबा किससे मिल रहे थे, कौन किससे मिल रहा था? कल की मूली तो थी, हाँ, स्नेह का सागर, स्नेह में खोई हुई आत्माओं से मिलन ना रहे। बाबा कहते हैं ये स्नेह की प्राप्ति केवल तुम बच्चों को है अभी संगम पर, संसार में ये प्राप्ति किसी को नहीं है। कितना नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान स्नेह का सागर हम सब बच्चों से मिलने के लिए आया हुआ है। अपना सारा स्नेह हमारे पर वो उड़ेल रहा है, उमड़ उमड़ कर उसका स्नेह हमारे पर बरस रहा है। तो हम सब कितने न सौभाग्यशाली है। लेकिन बाबा कहते हैं दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है जो जिन्हें स्नेह की प्राप्ति है, प्राप्ति वाले, और दूसरा है उस प्राप्ति की अनुभूति में खोए रहने वाले। तो एक है प्राप्ति की स्मृति है, लेकिन दूसरा उसके स्वरूप में डूब गए वो, माना उनको संसार में दूसरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अगर आता भी है तो सब जैसे सबके अंदर वो ही स्नेह दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो डूब चुका हुआ है। जैसे रंग का चश्मा पहनेंगे वैसा तो दिखाई देगा ना, तो सब में वो परमात्म स्नेह ही ढूंढेगा, उस परमात्म स्नेह का ही सबको अनुभव कराएगा, क्योंकि वो समा गया हुआ है। तो ये परमात्म स्नेह का नशा इस संगम युग में केवल हम बच्चों को ही प्राप्त है, तो कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन ये नशा क्यों भूल जाता है, क्योंकि दूसरे नशे भी बहुत है हमने करके रखे हुए, वो छूटते थोड़े नहीं है सहज। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों का और ये जो नशा है अनुभूति का, अनुभूतियों में खोए रहने का नशा, इसके ऊपर कोई आंख भी नहीं उठा के देख सकता। समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठा के भी कोई नहीं देख सकता है। तो हम सारे दिन में जांच करें कि हम प्राप्त परमात्म प्राप्तियों के नशे में या स्नेह में खोए हुए रहते हैं, या दूसरी प्राप्तियां हद की प्राप्तियों में हमारी बुद्धि जाती रहती है। तो स्वयं की जांच करनी है। जितना हम मुरली को घोटते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे संकल्पों में ताकत आएगी, शक्ति आएगी, नवीनता आएगी, पवित्रता आएगी, उसमें एक बल भरेगा। वो संकल्प साधारण संकल्प नहीं रहेंगे, सिद्धि स्वरूप संकल्प बन जाएंगे, क्योंकि संकल्पों को ईश्वरीय शक्ति का पोषण मिल रहा है, और वो संकल्प सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, साधारण संकल्प नहीं रहेंगे। जो संकल्प करेंगे, बाबा ने कहा ना अंत में, जो सोचेंगे वही होगा। ड्रामा और तुम बच्चों के संकल्प पैरेलल में काम करेंगे। तो कब करेंगे, जब पहले से हमारी संकल्प की शक्ति इतनी पवित्र होगी, पावर होगी, उसमें प्योरिटी भरी होगी। तो संकल्प शक्ति को कैसे शक्तिशाली बनाना है, बार बार रिवाइज करने के। पिछले संडे के मूल्य में था ना कि बच्चे रियलाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं। रियलाइज करने का आधार है रिवाइज करना बार बार, तो हमारे संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे। संकल्पों में एक बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी अंदर में। तो हमको हमेशा ईश्वरीय अनुभूति के स्नेह के सागर में समाये रहना है। अगर इसमें नहीं समाये रहते तो बाबा ने उसका बताया क्या कारण है, क्यों नहीं समाये रहते हैं, और नहीं समाते हैं तो क्या होता है, युद्ध। और युद्ध किसका होता है, स्मृति विस्मृति, कि मैं बाप का हूं, यह स्मृति लानी पड़ती है। कोई बच्चा सोचता है कि मैं बाप का हूं, उसको तो पता ही होता है ना, लेकिन हमको सोचना पड़ता है, कितनी विडंबना है। भगवान को आकर याद कराना पड़ता है, कितना भूले हुए रहते हैं। तो इस स्मृति और विस्मृति का युद्ध, हां ना व्यर्थ समर्थ, इस युद्ध में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं युद्ध नहीं करो, क्या बनो, योगी बनो, निरंतर योगी, सहज योगी बनो। और इसका कारण है, युद्ध का कारण चार कारण बताए, कौन कौन से, युद्ध क्यों करते हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चों में क्या व्यर्थ देखने की आदत है, व्यर्थ वर्णन करने की आदत है, सोचने की आदत है, और सुनने की आदत है। और है तो है ही है ना। अच्छा हाथ खड़ा करो, किसमें व्यर्थ देखने की आदत है, हाथ खड़ा करो, जिसमें व्यर्थ देखने की आदत है हाथ खड़ा करो। हाँ आज हाथ खड़ा करेंगे तो बाबा सब ले लेगा वापस, बाकी किसी में भी नहीं है ना। सच्चे दिल पर साहब राजी, आदत तो है ही है, ना चाहते हुए तुम कभी देख लेते हैं ना, तो प्रतिज्ञा करेंगे वो चीज हमको आज से नहीं देखनी है, जिससे युद्ध करना पड़े। वो चीजें नहीं देखनी है जिससे हमारी दिव्य दृष्टि है वो दिव्य के बजाय आश्रय दृष्टि हो जाए। भगवान ने हम सबको दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है, और उस वरदान का हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। दिव्य नेत्र दिए हुए हैं, तो भगवान ने दिव्य नेत्र दिए हुए हैं तो उनसे हमको उन नेत्रों से हमको क्या देखना चाहिए। ये नेत्र भगवान की दी हुई अमानत है और उस अमानत को हम ख्यानत में परिवर्तन कर रहे हैं, ख्यानत डाल, उस अमानत में ख्यानत डाल रहे हैं, तो कितना बड़ा दोष लग जाएगा हमारे पर, कितना बड़ा पाप के भागी बन जाएंगे। फिर बाद में धर्मराज जी खड़ा होंगे, कैसे डंडा ले गए। तो हमको अटेंशन देखना है। आज से जो देखा ना माफ सारा, बाबा ने क्या कहा कि बता दिया तो आधा माफ है ना, तो दो बार बता देना सारा माफ हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हमको बुराइयों से मुक्ति की आदत, वो ताकत मिल जाएगी हमको अगर बाबा से हम सच्चे दिल से साफ करके बता देते हैं ना, और उन बुराइयों से छूटने के लिए थोड़ा हिम्मत रखते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो सचमुच बाबा की मदद मिलती है। तो आज से व्यर्थ देखना बंद। अच्छा, व्यर्थ देखते क्या क्या, ये भी हमको पता होना चाहिए ना कि व्यर्थ क्या क्या देखते हैं। गुण, अवगुण देखते हैं, हाँ, दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं और माया के गुण देखते रहते हैं। दूसरों के अवगुण देखना और क्या क्या देखते रहते हैं, मोबाइल, मोबाइल को हम आज तक अभी हमने बदनाम कर दिया बेचारे को। मोबाइल तो बहुत अच्छा है लेकिन हम सब ने उसको बदनाम कर दिया बहुत। मोबाइल खराब थोड़ा नहीं है, हम खराब हैं। चाकू खराब थोड़ा होता है, उसको चलाने वाला है, चाहे वो ऑपरेशन करे चाहे वो किसी का खून करे। अब चाकू का क्या दोष है बेचारे का, दोष किसका है, और हम मोबाइल को दोष दे देते हैं। आज तक हम कितना मोबाइल ने बेचारे ने गालियां झेली होंगी, क्योंकि हर क्लास में मोबाइल को तो यू बोल ही लेता कोई भी कोई। तो मोबाइल बेचारा बहुत अच्छा है, हम खराब है। क्योंकि हमारी आदत हो गई दूसरों को दोषारोपण बनाने की कि मोबाइल जो ना बहुत खराब हो गया है। तो देखना क्या क्या है वो हमें निश्चित करना है कि बुरा नहीं देखना है, और इन आंखों के बारे में चिंतन करना है, ताकि हम बुरा देखने से पहले हमें स्वयं के प्रति अपने वैल्यू का पता होना चाहिए। क्या सोचना आंखों के बारे में कि ये साधारण आंखें नहीं हैं, अभी ये भगवान के दिए हुए नेत्र हैं, ये दिव्य नेत्र हैं। इन नेत्रों से ईश्वरीय शक्तियों की लाइट निकलती रहती है, इन नेत्रों से बाप दादा का साक्षात्कार कराने के लिए नेत्र मिले हुए हैं। ये नेत्र सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे गिफ्ट में मिले हैं। तो इस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, एक एक कर्मेंद्रियों के ऊपर अच्छा चिंतन चाहिए, ताकि इन कर्मेंद्रियों में भी ईश्वरीय वाइब्रेशन समाते जाएं, शक्ति समाती जाए। नहीं तो हम ऊपर ऊपर का योग करते हैं, मैं आत्मा हूँ बाबा के पास बैठी हूँ, लेकिन 24 घंटे तो हमको इस शरीर में बैठना है। जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं उसका तो हम शुद्धिकरण कर ही नहीं रहे, सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदिर भी तो साफ चाहिए ना, जब ये मंदिर साफ होगा तो ऊपर वाला भी तो अवतरित होगा, तभी तो उसकी नज़र पड़ेगी। हमने पहले से गंदगी डाल के रखी है और सीधा ऊपर उड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग प्लेन हो जाती है, एकदम क्रैश हो जाते हैं। तो हमको इस देह रूपी मंदिर का भी शुद्धिकरण करना है। तो आज से हम बुरा देखना बंद। तो सबको बधाई, क्यों, क्योंकि आज से बुरा देखना बंद हो गया। तो आज से हम कौन है, दिव्य नेत्र वाली महान आत्माएं हैं, दिव्य नेत्र वाली संसार को शक्ति देने वाली आत्माएं हैं। तो अच्छे अच्छे से संकल्प करने हैं, तो इन कर्मेंद्रियों को भी मजा आएगा, सुख मिलेगा, इन आंखों में भी चमक आएगी। बाबा ने कहा ना, अंत में तुम्हारी ये आंखें जादू की डिब्बिया बन जाएंगी, अंत में ये आंखें बल्ब, बड़े बड़े बल्ब बन जाएंगे, उनसे रोशनी निकलेगी, ये लाइट हाउस बन जाएगा। तो हमको अच्छा अच्छा चिंतन करना है। तो आज से देखना बंद, ठीक है, तो कितनी खुशी होगी, कितना हल्का हो गया आज से ना। अच्छा, दूसरा क्या था, व्यर्थ सुनने की आदत। तो क्या क्या सुनते रहते हैं, अगर कोई ज्ञान की बात सुनाता रहे तो वो सारी याद नहीं रहती है, और 15-20 इधर उधर की बातें बता दे तो सारी याद रहेगी, है ना। तो व्यर्थ बहुत सारी बातें सुनते सुनाते रहते हैं, है ना, चाहे वो राजनीति की बातें हैं, अर्थात जो हमारे सब्जेक्ट की नहीं है, जो हमारा विषय नहीं है, उससे हटकर हम कोई चिंतन करते हैं, सुनते या सुनाते रहते हैं, अर्थात हम अपने आप को डस्टबिन बना के रखा हुआ है, क्योंकि उससे हमारी उन्नति नहीं है, अवनति हो रही है। तो हम क्यों सुनते रहते हैं सारे दिन में, है ना? कोई कोई पिछले संसार में जो होकर गए हैं उन्हीं के बारे में चिंतन करते रहते हैं, फलाना इस धर्म का था, अभी इस धर्म का हो गया, अरे क्या लेना देना इन बातों से। हमारा तो एकदम बेहद का ब्राह्मण जीवन है, कहाँ फंसे हुए, सारा दिन चिंतन चलता रहता लोगों का, कितना उच्च कोटि का हमारा ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, और हम छोटी छोटी बातों में फंसे हुए। विश्व के महाराजन महारानी बनाने के लिए भगवान आया हुआ है, और अब एक छोटे से गांव के बारे में बात कर रहे हैं, बताओ। तो हमारा चिंतन कितना ऊंचा चाहिए। ये कान साधारण नहीं है, ये कान क्या है, सोने का बर्तन, वैसे तो बुद्धि है लेकिन सुनते तो कानों से है ना, तो ये साधारण कान नहीं है, ये हाथी के कान है। हाथी के कान अर्थात जो बुरी बातों को पीछे झाड़ देते हैं, अच्छी बातें अंदर जाती हैं। हाथी अर्थात विशाल, विशाल मानसिकता वाले। तो आज से बुरा सुनना भी बंद, सुनाना और वर्णन करना। हाँ, कोई सुनाए तो हमारे अंदर जाएगा नहीं, जैसे बाबा ने बोला ना, बच्चे सुनते हैं कान से दूसरे से निकल जाता है। तो ऐसे बुरे के लिए ऐसा काम करना है, ज्ञान के लिए नहीं, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्यों सुने उसे। और अगर कोई जबरदस्ती सुनाता है तो हमारे उस ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा अंदर ही अंदर कनेक्शन ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। अंदर ही अंदर हमारी जो वृत्ति है उपराम वृत्ति है, वो चीज़ें हमको इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि हम उससे निकल चुके हैं, वो रस नहीं है उससे हमको मिलता है। अब जिस चीज़ से हमको रस नहीं मिलता है, जैसे देखिए शाम को भी सब योग में बैठते हैं, जो एकदम मस्त होकर योग में बैठता है तो उसको आसपास के वातावरण से कोई लेना देना नहीं, भले कोई बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई लेना देना नहीं उससे, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है कब, जब हमारा ध्यान उन बातों में जाता है। तो हमको अपनी अवस्था को इतना मजबूत बना देना है, ज्ञान योग से परिपूर्ण कर देना है, ताकि हमारा जो मन है, हमारा जो योग है, वो अपने आप ही ऊपर स्वतः उपराम वृत्ति रहे, अपने आप ही लगा रहे, लगाना ना पड़े वो। तो सुनना, बोलना, वर्णन करना, अर्थात ज्यादा बोलना, ज्यादा वायु मुक्ता में आना, ज्यादा बातचीत करना, इससे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। बाबा कहते तुम्हारे बोलते इतने महान होने चाहिए जो सुनने वाले भी क्या करें, बंस मोर करें, या जैसे महावाक्य हो। महावाक्य कैसे होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, सत्य वचन महाराज, तो ऐसे वाक्य होने चाहिए। और चौथी बात कौन सी थी जो सबसे बड़ी आज का, सोचने की। अनावश्यक सोच बहुत होती है आजकल, बोलने वाला तो फिर भी दिखाई देता है ना, लेकिन जो सोचने वाली आदत है, सोच सोच के मनुष्य परेशान हो जाता है। सोच लेते हैं मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हुआ है नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। या तो पास्ट की सारी बातों को पकड़ के बैठ रखे हुए हैं, या तो फ्यूचर के बारे में सोचते जा रहे हैं। अब इन दो पार्टों के बीच में वर्तमान जीवन जो हमको गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, ये गिफ्ट का जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है, पिसता जा रहा है। तो वर्तमान में जीना है, वर्तमान में अच्छे संकल्पों का बीज बोएंगे तो फ्यूचर की खेती श्रेष्ठ हो जाएगी। संकल्प का बीज है ही नहीं हमारे पास, तो फ्यूचर भी खराब ही होगा। इसलिए सारे दिन में हमको अच्छे अच्छे संकल्पों के बीज इस मन रूपी धरनी के ऊपर बोने, ताकत वाले, ताकि जिनसे हमको भी रस मिले और दूसरों को भी रस मिले। आज बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, आज का स्लोगन क्या था, बताओ बताओ जोर से, चेयरफुल चेहरा, क्या काम करे, बोल्ड का काम करे। तो चेहरे पर ऐसे नहीं कि हमारे एकदम रेखाएं, चिंता वाली रेखाएं हो, नहीं, शुभ चिंतन करेंगे तो सारी चिंताएं मिट जाएंगी। तो खुशी का चेहरा हमारा कब दिखाई देगा, जब हमको स्वयं प्राप्तियों का पता होगा, भरपूर होंगे तभी तो चेहरे पर दिखाई देगा। जिसके पास माल पानी होता है तो चेहरे पता चलता है, उसकी खुशी गायब नहीं होती कभी भी। खुशी गायब किसकी होती है, जिसके पास कम पैसे होते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो मैं ज्ञान की संपत्ति देकर इतना माला वाला बनाया कि संसार की आत्माएं भी उसके आगे आज बताना अक्षौणी सेना भी कुछ नहीं कर सकती है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, एक साइड में एक पक्ष में अक्षौणी सेना हो या संसार की सारी आत्माएं, दूसरी तरफ तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं, तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो वो खुशी हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों का असर हो जाता है क्योंकि हमको स्मृति में नहीं रहता है। तो प्राप्तियों की स्मृति, दूसरा अगर युद्ध नहीं करनी है तो ये चार बातों से मुक्त होना। कौन कौन सी? व्यर्थ देखना, वर्णन करना, सोचना, बोलना। तो आज से इनसे मुक्ति। बाबा कहते हैं वर्तमान समय वैराग्य के वायुमंडल की बहुत आवश्यकता है। क्यों क्यों आवश्यकता है? हाँ जी, क्यों आवश्यकता? थोड़ा बुद्धि को चलाना पड़ेगा ना। चला चलो कुछ भी बोलो। हाँ जी, बुद्धि के काम की बातें नहीं है। कौन सी बातें? संसार की बातें। और क्योंकि बिना वैराग्य के परमात्म प्यार मिलेगा नहीं, परमात्म शक्तियां मिलेंगी नहीं। और उसमें वैराग्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरेपन का क्या है? लगाव है, और बहुत टेस्टी लगाव है। वो कौन कौन सा लगाव है? मेरी बुद्धि, मेरी विशेषताएं, या मेरे जिज्ञासु, मेरा सेंटर, मेरे साधन, मेरी सेवा। ये छोटे छोटे मेरेपन, नए प्रकार के मेरेपन हमारे पुरुषार्थ को धीमा कर देते हैं। हाँ जी, हाँ, जैसे हमारी वृत्ति होती है उसका प्रभाव स्वतः ही हमारे आसपास के वायुमंडल पर पड़ता है, आत्माओं पर पड़ता है। तो हमारे सारे दिन में सूक्ष्म में मैंपन नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा सहज, सूक्ष्म से निकलना कोई सहज काम नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, सूक्ष्म नज़र रखनी पड़ती है। नहीं तो मान शान इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म होता है, घुमा फिरा के बाबा ने बोला ना, बड़ों के सामने भी अपने आप को रायल तरीके से पेश करते हैं। बड़े भी बेचारे सोच में पड़ जाते हैं, अभी क्या करें, इनकी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ेगी, फिर कंपैरिजन चालू हो जाता है। तो ये मैंपन जो है ना, बड़ा सूक्ष्म है और ये पकड़ में नहीं आता है। चाहे अपनी बुद्धि कहा है, या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। बताया बाबा ने, कहता है ना, माया भी समझदारी, माया की चाल साधारण नहीं होती है। पिछले संडे के मूल्य में था ना, माया के खिलौने बड़े आकर्षित करने वाले हैं। तो यहाँ भी माया की चाल क्या है? मैंपन, मेरापन। एक तरफ हम कहते हैं मेरा बाबा, फिर करते करते क्या होता है? बाबा भूल जाता है और मेरा रह जाता है। फिर क्या कहते हैं कि बाबा का भी मेरा, मेरा सो मेरा, बाबा का भी मेरा। बाबा कहते हैं तेरे, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। लेकिन होता क्या है? अब भगवान को तो इन चीज़ों से लेना नहीं है, जो चीज़ें हमारे पास तो हमारे पास ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं निमित्त भाव, वैराग्य अर्थात निमित्त भाव, यथार्थ वैराग्य अर्थात हर कर्म में, हर वस्तु का उपयोग करते हुए हमारे में निमित्त भाव रहना चाहिए। चीज़ें तो हमारे पास ही हैं वो सारी, उसको क्या लेना इन चीज़ों से, लेकिन उनमें हमारी आसक्ति ना जाए। इसलिए बाबा हमको अलग अलग युक्तियाँ बताते हैं। कोई भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो हमको स्मृति में रहना चाहिए कि हमको ईश्वरीय सेवा के लिए मिली। ओहो मेरा सौभाग्य कि भगवान ने हमारे जीवन को इस ईश्वरीय सेवा के लायक समझा है। संसार में कितनी असंख्य आत्माएं हैं, उनमें से हम कितनी गिनी चुनी आत्माएं हैं? और आए हैं कोई संसार में? इतने शास्त्र पढ़ने वाले हैं, कोई आए इधर? बाबा ने कहा भोले वाले बच्चों का ही बोला भगवान है, उसको पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है इतनी। सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जितना सच्चाई सफाई से हम बाबा के प्रति अपने मन बुद्धि को समर्पित करके रखते हैं तो समय पर उसकी टचिंग होती है। लेकिन बच्चे चलते चलते गलती कर लेते हैं। कौन सी गलती बताई थी? हाँ जी, दूर का दृष्टि। और बाबा ने कहा दूसरों को जज करने लग पड़ते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। और ये तो अंदर में होता ही है ना। हम कहाँ अपने आप को चाहते हैं कि मैं सबके सामने अपने आप को अच्छा ना प्रस्तुत करूं? चाहता हूँ कि ऐसे कि मैं बुरा प्रस्तुत करूं अपने आप को? तो अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करने के लिए अपना वकील ही बनना पड़ता फिर। लेकिन बाबा ने कहा अपना जज बनो, अपनी कमी कमजोरियों पर नज़र रखो, दूसरों के क्या बनो, वकील अर्थात दूसरों के सहयोगी बनो, जज नहीं बनो। लेकिन दूसरे की कमी कमजोरियां देखने की आदत पड़ जाती है। फिर मान लो एक एक कमजोरी देख लेते हैं, सारे दिन में उन्हें 15-20 लोगों से मिले और 15-20 कमजोरियां देख ली और 15-20 कमजोरियां हमारे सिर पर हावी होकर बैठ गई, पहले से ज़्यादा थी और हमने बिठा दी, तो बोझ उतारने की बजाय और ही बोझ हमने चढ़ा लिया अपने सिर पर। और फिर बैठ रहे हैं कि बाबा आप तो मदद करते नहीं, योग के लिए तो मैं बैठ रहा हूँ, है ना, दूसरों को बाबा मदद करता है, मेरे को तो मदद करता ही नहीं है। मदद करेगा कहाँ बाबा, फिर मदद तो करता है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि इतना बोझ बुद्धि को डाल के बैठ जाते हैं। जो बाबा कहते हैं वैसे तो नींद आती नहीं है और योग में बैठे तो सोना शुरू, क्योंकि बुद्धि को पहले से भर के रखा हो हमने, इसलिए गिर जाती है वो, उड़ान भर नहीं पाते हैं। तो हमें जज नहीं बनना है किसी का, क्या बनना है, दूसरों का सहयोगी बनना है, अपना जज बनना है, अपने आप को जजमेंट करना है, मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। ईश्वर श्रीमत के अनुसार अपने को कंपेरिज करना है कि कहाँ कहाँ मेरे से गलतियाँ हो रही हैं। स्वयं के ऊपर रहम करने का टाइम है अभी, स्वयं के ऊपर हम स्वयं रहम नहीं करेंगे तो बाबा भी बाद में रहम नहीं करेगा। बाबा ने तो बोला अभी रहम करने का टाइम अभी है, बाद में तो वो भी धर्मराज के रूप में साक्षी होगा। परीक्षा में सुपरिटेंडेंट अपना करता है उसकी सहायता स्टूडेंट की, नहीं पहले करता है, भले उसका बाप भी टीचर हो स्टूडेंट का, लेकिन परीक्षा के समय कोई किसी का नहीं होता है, तो बाबा भी अंत में तो कैसे हेल्प करेगा। हाँ, उसी की हेल्प करेगा जिसने अपनी स्वयं पर मदद की। तो कहते ना परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। तो ये अगर मदद का अनुभव करना है तो हमको सच्चाई सफाई से अपने ऊपर रहम करने का अभी समय वो चल रहा है। तो बाबा का हम बच्चों के प्रति कितना स्नेह है, स्नेह में बहुत बड़ी शक्ति है, जो बाबा कहते हैं अव्यक्त को भी व्यक्त में ले आता है। कितनी बड़ी भगवान की बात है कि भगवान को भी हम ऊपर से इस संसार में ले आते हैं, है तो भगवान की निर्माणता ही है, लेकिन हम बच्चों को बाबा हमेशा आगे रखते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चों को कहाँ रखते हैं माँ बाप, जो बड़े स्किल दे बच्चे होते हैं अपने कूल्हे पर कंधे पर रखते हैं। तो बाबा भी हमको अपने नैनों का नूर सिर का ताज बनाकर रखते हैं कि स्वयं भगवान भी अव्यक्त से व्यक्त में आ जाता है। हम सब बच्चों से मिलने के लिए स्नेह में इतनी शक्ति है। बाबा कहते हैं स्नेह में कोई भी बात मेहनत वाली नहीं लगती है, मेहनत वाली बात भी सहज हो जाती है, मुश्किल भी सहज हो जाती है ना। एग्जाम्पल बताया ना कि मधुवन के आंगन में भले तीन पैर पृथ्वी ने मिली लेकिन दो पैर भी कैसे अनुभव हुए, सतयुग के पलंगों से भी ज्यादा। और कंपैरिजन करें भक्ति में, ऐसे कोई मिलते हैं भक्ति मार्ग में, ऐसे कोई प्रवचन होता है जहां बड़े बड़े कुंभ में के मेले में जाओ या कहीं तीर्थ स्थानों पर जाओ, कितनी भगदड़ मची होती है। और भगवान की हम गोद में बैठकर उसके सन्मुख बैठकर उसके ज्ञान रत्नों का चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर रहे हैं, बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हम सबका कितना परम सौभाग्य है ये, तो कितनी खुशी की बात है, कितना स्नेह उसका बरस रहा है हमारे ऊपर। उसका स्नेह तो हमारे लिए जैसे श्वास की तरह काम करता है। अगर बाबा का स्नेह नहीं तो हमारा तो दम निकल जाए। और उसका स्नेह क्या है, उसके ज्ञान का अनुसरण करना, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना, यही तो उसका प्यार है। प्यार कोई अलग से थोड़ा दिखेगा, ऊपर से आया हाथ रख दिया और प्यार कर दिया, मीठे बच्चे ऐसे थोड़ा करेगा। उसका ज्ञान ही हमको स्पर्श करेगा, उसका ज्ञान ही हमारे शरीर को शीतल बना देगा। बाबा कहते हैं तुम शीतला देव और शीतला देवियां हो। तो ये ज्ञान क्या है, ज्ञान ही तो उसका प्यार है, ये सेवा तो उसका प्यार है, योगी तो उसका प्यार है। ये तो सारा अदृश्य खेल चल रहा है, गुप्त खेल चल रहा है, जो बाबा कहते तुम इनकॉग्निटो वॉरियर हो, गुप्त वॉरियर हो। ये तो सारा गुप्त रूप से अंदर ही अंदर सारा चल रहा है। उस युद्ध स्थल पर क्या चल रहा है, हम अपने आप को कितना अपने आप को बाबा के ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं, कितना चिंतन कर रहे हैं, अपने आप से कितना प्यार कर रहे हैं। तो स्वयं से प्यार करना सीखना है, नहीं तो अपने आप को हम घृणा से भर के रखते हैं कि मेरे में ये विशेषता नहीं है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मेरा चिंतन नहीं होता है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है, मान सम्मान नहीं है। इन चीज़ों से हमने आपको नेगेटिविटी से भर के रखा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं ऊंचे सोमान में रहो। तो जितना हम इस चीज़ का करेंगे तो वैराग्य स्वतः आ जाएगा। वैराग्य लाने की बात नहीं है कि मैं वैराग्य आत्मा हूँ ये सम्मान ले लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये ज्ञान ही हमको संसार की उन चीज़ों से वैराग्य दिला देगा जो आत्मा की अवनति करते हैं। ज्ञान एक तलवार की तरह है जो हमारी आसक्तियों पर प्रहार करता है। ज्ञान एक रोशनी है जो अंदर के अज्ञान अंधकार को समाप्त कर देता है। ज्ञान सुरमा है जो हमारे आंखों को क्या करता है, साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। तो ज्ञान ही हमारे लिए एक शस्त्र है ये, जो आने वाले मार्ग में सब प्रकार की बाधाओं को काट देता है। इसलिए ज्ञान से प्यार चाहिए। और बाबा ने टीचर बहन को क्या वो कहा, निमित्त है। किस लिए? जैसे बाबा कहते टीचर्स का टाइटल मिला है, ऐसे बेहद का वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने के लिए भी टाइट रहो। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम सब अपने आप में सब टीचर हैं, स्वयं के स्वयं तो टीचर है ना। तो है ना, दूसरों को पढ़ाना तो आसान काम होता है, सबसे भारी काम कौन सा है, स्वयं को पढ़ाना। ज्ञान सुनाना बड़ा आसान काम है, ये तो प्रैक्टिस की बात है। बाबा ने कहा ना, छोटे छोटे बच्चों को वैराग्य का भाषण देने के लिए कहेंगे वो भी दे लेंगे, लेकिन जब अपने पर बारी आती है, जब प्रॉब्लम आती है, किसने शरीर छोड़ दिया, तो बोलना तो आसान काम है, ड्रामा समझो। और जिसके ऊपर गुजरती है वो तो प्रैक्टिकल में जब हम आते हैं तो हमारा पता चलता है मापदंड कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक शक्तिशाली है, ताकतवर है, पावरफुल है, कहाँ तक हम एग्जाम में पास हो सकते हैं, कितना हमने अपने आप में सामर्थ्य भरा है, कितने हम शक्तिशाली बने हुए हैं, समस्याओं का सामना करने की शक्ति हमारे में कहाँ तक आई है, कहाँ कहाँ तक हमारे में ज्ञान रग रग में भरा है, ज्ञान के स्वरूप कहाँ तक बने हम, तब प्रैक्टिकल में हमको पता चलता है कि हमने हम कितने पानी में है। तो बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल के लिए तुम बच्चे निमित्त हो। तो हमें अपने आप को इतना भरपूर कर लेना है कि दूसरों को भी वैराग्य दिलाने के निमित्त हमारा जीवन बन जाए, अर्थात उन चीज़ों से अपने आप ही दूसरी आत्मा भी किनारा कर लें जिन चीज़ों से जीवन में अवनति हो रही है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, पता भी है, समझ भी है, लेकिन उड़ने की शक्ति नहीं है। बाबा ने तो कहा अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी जिनको आपको अपनी ताकत से उड़ाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अब घर में बच्चे होते हैं, अब बच्चे शक्ति नहीं है तो माँ बाप क्या करेंगे, पालना तो माँ बाप को करनी पड़ती है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे सारी सृष्टि के पूर्वज हो, तुमको सबकी पालना करनी है, अपने संकल्पों में इतना समर्थ हो कि उन समर्थ संकल्पों के वाइब्रेशन सर्व आत्माओं को भी ताकत भर दे। अगर स्वयं में शक्ति नहीं है तो दूसरों को शक्ति कहां देंगे। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। तो टीचर अर्थात निरंतर बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले, वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल निर्माण करने वाले, सबको बैराग दिलाने वाले अपने चलते फिरते जीवन से, बोर्ड से, चेहरे से, चलन से। और विदेशियों को क्या कहा बाबा ने, विदेशियों को कौन सा फैशन होता है, हाथ में हाथ मिला के चलना है। तो सभी अपने आप को विदेशी समझो आज से, है ना। और हाथ में हाथ मिला के चलने का कैसे चलेंगे, शिव बाबा का तो हाथ है नहीं, श्रीमत का हाथ, अर्थात बुद्धि में बाबा की श्रीमत घूमती रहे घूमती रहे घूमती रहे, है ना। इतना हाथ हमारा मजबूत हो जाए कि छूटे ना हो, और वो हाथ सीधा हमको सीधा ऊपरी ले जाए बाबा के पास ही, और बाद में हम ढूंढते रहे नीचे अपने आप को और ऊपरी पहुंच जाए। तो निरंतर हमारा हाथ बाबा के हाथ में रहे। अगर बाबा के हाथ में हमारा हाथ है तो उसका निशानी बताए बाबा ने, कौन सी निशानी बताई, बीच में जिक्र भी किया कि अगर अक्षौणी सेना भी है सामने, अक्षौणी आत्माएं भी है, तो वो भी आपका कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान, बच्चे हो तुम, सर्वशक्तिवान का साथ है। और एक माया की चाल और भी बताई कि सर्वशक्तिवान आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को ही माया अलग कर देती है। माया बहुत सूक्ष्म है, नए नए रूप में आती है, इसलिए माया को पहचानने की आंख भी हमारी उतनी ही तीखी चाहिए, तेज चाहिए। तो बाबा की ऐसी अनेक सारी बातें हैं। तो मुरली को बार बार रिवाइज करते जाना, मुरली हमारे जीवन का श्वास है, श्रृंगार है। मुरली का बाबा कहते हैं एक ऐसी लाठी है जो सीधा स्वर्ग में पहुंचा देगी, अर्थात इसी जीवन को हमको स्वर्ग अनुभव करना है। बाद में तो वहां तो महसूस ही नहीं होगा कि हम स्वर्ग में देवी देवता हैं, अब भी अनुभव करना है वो सारा। इस जीवन में। क्या ओम शांति।